أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پہلے تو آپ سب لوگوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد قبول ہو. یہ ماہ رمضان جو اب ہمارے درمیان آنے والا ہے, شروع ہونے والا ہے, اس رمضان سے ہر مومن کے دل کو جلا ہوتی ہے اور ہر شیطان کا دل جل کے رہ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان پابند سلاسل ہونے جا رہا ہے اور مومن کو ایک فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ میدان میں مد مقابل کوئی نہیں. چنانچہ ایک واک اوور ہے جو مومنین کی ٹیم کو دیا جانا ہے, بشرط یہ کہ مومنین کی ٹیم تمام رمضان اپنے قدموں پر جمی رہے, کھڑی رہے اور اس کے پاس استقامت میں کوئی لرزش نہ آئے. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم ہر سال رمضان گزارنے کے باوجود ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے رمضان سے پہلے؟ اس کی مثال سادہ سی دی جا سکتی ہے کہ جتنا کشتی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, فقط ایک سوراخ کافی ہوتا ہے اس کشتی کو ڈبونے کے لیے. جس طرح ایک ہوائی جہاز کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, ایک چھید کافی ہے اس کو کسی حادثے سے دوچار کرنے کے لیے. چنانچہ رمضان میں روزوں کے دوران جو غلطیاں ایک مومن دانستہ یا نادانستہ طور پہ کرتا ہے, ان غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے تمام روزے اور کیے کرائے پہ پانی گھڑ دیتا ہے. اب اتنا ہوگا کراچی میں, پاکستان میں اگر کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو, بم دھماکہ ہو, کوئی حادثہ ہو, تو ہوم منسٹر ٹی وی پہ آ کے جو جملہ اکثر دہراتے ہیں وہ ہے سیکیورٹی لیپس. ضرور کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہوگا. جب مومنین اکرام بھی روزہ رکھتے ہوئے یقیناً کسی سیکیورٹی لیپس کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزہ سیکیورڈ نہیں ہو پاتا. چنانچہ انہی غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو کہ ہمارے لیے ایک درد سر بن چکی ہیں, اس مومن کے لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود اس مہینے سے استفادہ کا محققہ نہیں ادا کر پاتا, ان غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ درس آپ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے کہ رمضان میں کس مقام پر اور کس طرح ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو آئیے ان غلطیوں کا ایک جائزہ لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو اہم چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ اپنی مسٹیک کو مسٹیک سمجھیں اور اس کو قبول کریں. جب تک ایک انسان اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرے گا, اس وقت تک وہ اس غلطی کے حل کے لیے کوئی تگدو نہیں کرے گا. اگر کسی مریض کو یہی نہیں معلوم کہ میں مریض ہوں, تو وہ مرض کے علاج کے لیے کبھی بھی بھاگ دوڑ نہیں کرے گا. اس سے پہلے کہ ہم غلطیوں کا جائزہ لیں, اس سے پہلے چند مقدماتی گفتگو اہمیت رمضان کے حوالے سے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. فرماتے ہیں جو شخص رمضان میں نہ بخشا گیا وہ آئندہ بھی نہ بخشا جائے گا, مگر یہ کہ عرفات میں حاضر ہو. یعنی اگر آپ کو رمضان میں فرصت نہ ملی اپنے آپ کو بخشوانے کی, تو آپ کو حج کے موقع پر حاضری دینی ہوگی. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو روزہ رکھ لیں یا تو ذوالحج کا انتظار کریں اور حج پر جائیں. اور اگر آپ ان دو کاموں کو کمپیئر کریں تو آپ دیکھیں گے حج پر پیسے کی ضرورت ہے جو تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ تک جا پہنچی ہے. روزے میں الٹا پیسے کی بچت ہے کہ اس میں کھانا پینا کم ہو جاتا ہے. حج میں دوری اختیار کرنی پڑتی ہے اپنے گھر والوں سے, جبکہ روزے میں خود آپ کا باس آپ کو جلدی چھٹی دے کر گھر والوں کے ساتھ چند فرصت کے لامحات گزارنے کی آسانی فراہم کرتا ہے. حج کے لیے 1.5 مہینے 1.5 مہینے کی چھٹی لینی پڑتی ہے, جبکہ یہاں پر آپ کا باس خود آپ کو جلدی چھٹی دیتا ہے. حج کے لیے سفر اختیار کرنا پڑتا ہے, خود مسائل سفر اتنے ہیں کہ وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں. چنانچہ حج کے لیے جو شرائط ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ سفر محفوظ ہو. جبکہ رمضان میں آپ کو سفر نہیں کرنا بلکہ लोग सफर करने से गुरेज करते हैं, और जो सफर करता है उसके पर तो वाकिद हो जाता है। हज के लिए मसाइल हज सीखना जरूरी है, अगर कोई गलती हो गई या खुदा ना खास्ता कोई रुकन अदा करने से रह गया तो आपको वो हज ए से लेके जेड तक, अलिफ से लेके ये तक दोबारा करना है। हज में आप खुदा के मेहमान होते हैं, जबकि माह रमजान में खुदा आपके यहाँ मेहमान बनकर आता है। आप बिन बिलाए किसी के मेहमान बन सकते हैं, लेकिन अगर कोई खुद आपके पास मेहमान आए तो आपके लिए बड़ी सआदत है। चुनाचा ये फैसला उस वक्त और भी आसान हो जाता है कि जब हदीस रसूल हमारे सामने आती है कि मोमिनों को जब दो कामों में इख्तियार करने का मौका दिया जाए तो मोमिन किसी आसान दो में से आसान काम का इंतखाब करता है। दूसरा अहम मुद्दा याद रखिए कि जिंदगी दो चीजों का नाम है, डूज एंड डोंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स, हलाल और हराम, जो करना है जो नहीं करना है। रमजान आपको ममनुआत से बचाने का नाम है, और वो ममनुआत जो कि आम दिनों में जायज होते हैं, मतलब खाना पीना जायज है और उनसे अल्लाह ताला आपको रोक रहा है। अब खाने पीने से अल्लाह की रजा का तकवे का क्या ताल्लुक? रिवायात कहती है कि बिस्यार खोरी यानी ओवर ईटिंग इंसान के दिल को मुर्दा बना देती है, क्योंकि दिल एक खेती की मानिंद है, जो ज्यादा खाना उसे तबाह कर देता है। देखिए, पौधे को पानी की जरूरत है, पानी नहीं मिले तो वो तबाह हो जाए, मुरझा जाए, मर जाए। लेकिन अगर पानी ज्यादा मिल जाए तो आपने देखा होगा कि सैलाब में कितना फसल तबाह हो। इसी तरह शकीउल कल्बी उस वक्त पैदा होती है जब आदमी का पेट भरा होता है। इसका अंदाजा आप रमजान में आसानी से लगा सकते हैं कि इफ्तार से पहले जिन हाथों में तस्बीह होती है, इफ्तार के बाद उन हाथों में रिमोट कंट्रोल आ जाता है। दुश्मन खुदा है वो शख्स जो ज्यादा खाता है और ज्यादा सोता है। नमाज ना पढ़ने वाला, रोजा ना रखने वाला, इबादत ना करने वाला, झूठ बोलने वाला, गीबत करने वाला, हराम खाने वाला अल्लाह का दुश्मन नहीं, बल्कि वो दुश्मन है जो ज्यादा खाता है, ज्यादा ज्यादा सोता है। क्यों? हालांकि देखा जाए तो ज्यादा खाना ज्यादा सोना कोई हराम काम नहीं, लेकिन हराम की तरफ आपको ले जाते हैं ये दो काम। चुनांचे अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को दुश्मन कहा है। विचारखोरी की जिद यानी गरसंगी, अंडर ईटिंग या कम खाना, खुदा अपने फरिश्तों के दरमियान फख्र व मबाहात करता है जो कम खाता है। कितनी बड़ी इज्जत, कितनी बड़ी डिग्निटी, कितना बड़ा मुकाम, कितना मर्तबा मर्तबा, कितना बड़ा मनसब आपको दिया जा रहा है फकत कम खाने कम सोने की वजह से, कम खाने की वजह से, कि अल्लाह ताला फखर करता है फरिश्तों की दरगाह में, देखो ये वो मेरा बंदा है जो कम खाता है। और इससे भी अजीब बात, असरार इलाही इन दिलों में दाखिल नहीं होते जिनके पेट भरे हुए होते हैं। आप देख लीजिए कि जब इंसान का पेट भरा होता है तो गुनाहों की सोचती है, पेट खाली हो तो खुदा की याद आती है। कहा जाता है कि इंसान अपनी भूख से एक लुकमा ज्यादा खा ले तो आइम्मा की जियारत से महरूम हो जाता है। तो सारी लाही इन दिलों में दाखिल नहीं होते जिनके पेट भरे हुए होते। तो कम खाना कितना ज्यादा अहम है हुसूल रजाए परवरदिगार के लिए, इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। अब आइए मरगूबात की तरफ। अगर अल्लाह ताला ने भूख और प्यास की सूरत में, नींद की कमी की सूरत में आपके लिए कोई तकलीफ मुसीबत रखी है, अगर ये है तो दूसरी तरफ मरगूबात भी रखी है। आसानियां हदीस में है कि तुम्हारी सांसें तस्बीह और तुम्हारा सोना इबादत। आपने सुना होगा कि लैलतुल कदर में फकत जागना इबादत है। अगर आप कुछ ना भी करें और जागते रहें तो आपका जागना भी इबादत है। कितनी बड़ी बात है, कितनी हैरत होती है सुनकर ये बात के कुछ ना करें और जागते रहें बात होती है। यहाँ भी इससे ज्यादा हैरत होनी चाहिए कि आप जाग भी नहीं रहे, आप तो सो रहे हैं गफलत में, उसके बावजूद अल्लाह ताला आपके सोने को इबादत शुमार कर रहा है। आप कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ सांस ले रहे हैं, वो आपकी तस्बीह है। और फिर इसी रमजान में, माह रमजान में शब कदर जो एक रात है लेकिन हजार महीनों से बेहतर है, 83 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स, लाइफ टाइम, एक जिंदगी से भी ज्यादा के बराबर इबादत का सवाब इंसान इस बात में कमा सकता है। और खुद बंदिश शैतान इतनी बड़ी आसानी, इतनी बड़ी रियायत, इतनी बड़ी कंसेशन है कि इंसान खुशी से झूम जाए कि जिस चोर से, जिस डकैत से, जिस लुटेरे से, जिस दुश्मन से मुझे खौफ था कि वो मेरी नेकियों को हड़प कर लेगा, चख लेगा, चोरी कर लेगा, वो दुश्मन मौजूद ही नहीं। लेकिन इन तमाम तर फसाइल के बावजूद अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए माह रमज़ान एक आदत बन चुका है। मैं 10 साल से रोज़ा रख रहा हूँ, मैं 50 साल से रोज़ा रख रहा हूँ, मैं 20 साल से रोज़ा रख रहा हूँ, एक रोज़ा नहीं छूटा, आदत बन चुकी है रोज़ा रखना। कुछ लोगों के लिए सकाफत है, टीवी ऑन करें लग रहा है कि रमज़ान रमज़ान नहीं बल्कि एक कल्चर वैल्यू है जिसे हमें मेंटेन करके रखना है। इफ्तार में खाने कैसे होंगे, सहरी कैसे होगी, दिन कैसे गुजारना है, रातों को शुभदारी कैसे करनी है, लहू लाभ की महफिलें जमा के। लेकिन हकीकत में कुछ लोग जो कि बहुत कम हैं उनके लिए रमज़ान वाकई माह रमज़ान की इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप हमसे पूछें तो रमज़ान एक घन चक्कर है। अगर आपको इस गैर पार्लिमानी लफ्ज़ पर एतराज़ है तो इसको हजफ किए देते और इसका नाम सरकस रख लेते, क्योंकि इंसान इस रमज़ान में महीने में जोकर से कम नहीं लगता। खवातीन सुबह उठती हैं, 10 मरतबा इस्तखारा करती हैं, काम करें कि ना करें कि हमारा रोज़ा है। मर्द हजरात ऑफिस में जाने के लिए बार बार घड़ी देखते हैं कब जाएं, अभी तो बहुत वक्त है, आज हमारा रोज़ा है, जाएं या ना जाएं, ऑफिस जाके या खुद घर में। इंसान जो है कटी पतंग की तरह रहता है, कभी इधर ढुलका कभी उधर ढुलका, हर चीज़ जो है हर शय जो है उसको बिस्तर लगती है। फिर दोबारा दोपहर में कैलूले का वक्त आता है, नाम कैलूले का होता है, लेकिन पूरे 6 घंटे की जकार लेके नींद की आप उठते हैं, और वो भी आप उठते क्या है, खुदा उठाता है आपको, मौजन अजान देता है और आप भागम भाग इफ्तार के दस्तरखान पर तातारियों की तरह हमला कर देते हैं और सब कुछ हड़प कर जाते हैं। वो पेट जो कभी तिनका था मटके में तब्दील हो जाता है, और सोफे पे काउच पोटैटो की तरह जिन हाथों में तस्बीह थी अब रिमोट कंट्रोल आ जाता है, चैनल चेंज करने लगते हैं कि देखें रमज़ान की मुनासिबत से किस कौन सा चैनल देखा जाए, और इसी मुनासिबत को मद्देनजर रखते हुए 5-5 मिनट हर चैनल को दे दिए जाते हैं जो तकरीबन 2 घंटे में पूरे होते हैं, और रिमोट कंट्रोल हाथ में लेते लेते चैनल तब्दील करते करते आंखें बंद हो जाती हैं, टीवी खुला का खुला, और अम्मी अब्बू बड़े भाई या बहन या ढोलची जो गली में ढोल बजाता हुआ आता है वो आपको उठाता है कि भाई सहरी का वक्त हो गया है, लेकिन आप उठते वही 5 या 10 मिनट पहले हैं, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी की तरह सायरन बजाते हुए किचन की बजाय फ्रिज का रुख करते हैं अपने पेट की आग बुझाने के लिए। नींद में अध खुली आँखों के साथ जो चीज़ हाथ में आती है मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, जैम की बोतल ढक्कन खोल के मुंह में डालते हैं तो पता चलता है कि कैरी यानी अचार की बोतल हाथ में आ गई थी, भागते हैं बेसन की तरफ, याद आता है कि खजला तेरी मौजूद है, चले उसी से तहरी कर लें, फ्रिज में रखे हुए दोनों तसलों को हाथ से निकालते हैं तो दूध नीचे गिरकर बहरे बेकरा की सूरत अख्तियार कर जाता है। आंखों में नींद का खुमार हो और दिल में घुमंड तो इंसान दूध को दूध की नहर समझ लगता है, तो कहता है या खुदा अभी तो मैंने रोज़ा शुरू भी नहीं किया, तूने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया, दूध की नहरें बहा दी। चुल्लू ने दूध हाथ में लिए पीने की कोशिश करता है, पैर फिसलता है दरवाजे से बाहर, और बाहर मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज़ बुलंद होती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ना खजला मिला ना फेरी सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तकिया बगल में दबाए बिस्तर की तरफ दवा दवा जा, अपनी हसरतों पर आंसू बहा के सो जा। एक दूध पढ़ लीजिए मोहम्मद, ये थी एक रोजादार की डायरी का एक सफा। अब आइए डायरी बंद करके रिवायात का खजाना खोलते हैं कि उसमें रमज़ान के हवाले से हमारे लिए क्या है। जिस शख्स के 2 दिन बराबर हों वो खसारे में रहा। इस हदीस को स्ट्रेच कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, जिस शख्स के 2 महीने बराबर हुए वो खसारे में रहा। यानी अगर आपका शाबान रजब से बेहतर नहीं है आप खसारे में, रमज़ान शाबान से बेहतर नहीं है आप खसारे में, शाबान रमज़ान से बेहतर नहीं है आप खसारे में। तो अगर एक इंसान रोज़ा गुजार के माह रमज़ान गुजार कर फिर भी वैसा ही क्या वैसे रहे तो इसका मतलब वो खसारे में। अगर बंदे को मालूम हो जाए कि माह रमज़ान में क्या कुछ है तो वो इस बात को दोस्त रखेगा कि तमाम साल रमज़ान रहे। बच्चों की छुट्टियां आज ख़त्म हो रही हैं, कल से गुरु स्कूल जाएंगे, उनसे पूछें वो यही कहते हैं कि काश 2 महीने की छुट्टियां पूरे साल रहें। इसी तरह अगर हमें अजर मालूम हो जाए रमज़ान का तो हर कोई ये चाहेगा कि पूरे साल रमज़ान रहे। रमजान के इतने फवायद हैं कि अगर वो फवायद ही बयान किए जाएं तो शायद माह रमजान मुकम्मल हो जाए, फवायद पूरे ना हो। फकत पांचवी रोजे का सवाब आपके लिए मुंतखब करके हम पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट कॉन्शियस लोगों के लिए है। टेस्ट कॉन्शियस लोगों को उर्दू में पीटू लोग कहते हैं। पांचवा रोजा जो रखता है फकत, उसके लिए ये है कि माह रमजान के पांचवें रोज अल्लाह रोजादार के लिए 10 लाख शहर और हर शहर में 70,000 घर, हर घर में 70,000 दस्तरखान, हर दस्तरखान पर 70,000 प्याले और हर प्याले में 60,000 इकसाम के खाने और हर खाना मुख्तलिफ जायके का। आपने अगर हाईटी अटेंड की हो या नाम सुना हो, एक दफा हम चारे पैसे से गुजर रहे थे कि फोर स्टार होटल के बोर्ड पर हाईटी का एड लगा हुआ था, तो हमने जब उसमें मौजूद आइटम्स काउंट किया, आइटम्स का मतलब है छोले, दही बड़े, पकोड़े, समोसे, पेटिस, पेस्ट्री, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह वगैरह, खाना नहीं, तो वो 36 आइटम थे, 36। इसी तरह जो लोग बारबेक्यू अटेंड कर चुके हों, बूफे अटेंड कर चुके हों, तो तुम्हें मालूम होगा कि 90 डिशेज, 100 डिशेज, 150, 200 डिशेज होती है। आदमी के लिए इमेजिन करना मुश्किल है, कंफ्यूज हो जाता है मैं क्या करूं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फकत पांचवें रोजे में इतना सवाब रखा है। तो अल्लाह ताला अगर भूखा प्यासा रख रहा है तो आपकी दिलों की ख्वाहिशों को जानता है कि आपके खाने का जी चाह रहा है लेकिन आप नहीं खा रहे, बस उसी ख्वाहिश की तकमील, उसी ख्वाहिश की तलाफी के लिए आपको वो कयामत में फकत एक रोजे का इतना सवाब देगा। खुदाबंद तबारक ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी सजा दूंगा, यानी मैं पर्सनल गारंटी दे रहा हूं, मैं अपनी जाती जमानत दे रहा हूं, कोई चीज गिरवी नहीं रखवा रहा। क्योंकि अगर एक बच्चे को, जो 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा, कोई कहे कि तुम दाने पास जाओ तो मेरी गाड़ी देंगे, वो बेचारा क्या समझे, क्या इस्तेमाल करेगा गाड़ी को। अगर आप कहें हम तुमको चॉकलेट देंगे, वो समझ जाएगा। तो हम भी उस बच्चे की तरह है जिसको अल्लाह ताला बहला रहा है ये चीजें बतला कर, लेकिन यकीनन जन्नत में जाकर हम ऐसी ऐसी नेमतें देंगे जिसको देखकर इंसान हैरान हो जाएगा, कि जिसको ना उसने सुना होगा, जिसको ना उसने देखा होगा। जब अल्लाह ताला ने इतने फायदे माहे रमजान में रखे, तो हम क्यों नहीं संजीदा होकर बैठे और सोचे कि वो कौन सी गलतियां जो इस माहे रमजान में हम करते हैं और जिसकी वजह से माहे रमजान को मुकम्मल इस्तेफादा हासिल नहीं कर पाते। अच्छा, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पूरे नेक नियति से पुरखलूस होकर रमजान के रोजे रखते हैं लेकिन इसके बावजूद गलती कर जाते हैं। मसलन एक स्टूडेंट इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी करके इम्तिहान देने जाता है तो पता चलता है वो अपना कलम घर भूल गया, इतनी सी गलती उसके इम्तिहान में नाकामी का सबब बन सकती है। इसी तरह रोजे में होने वाली छोटी छोटी गलतियां जो पूरी नेक नियति खलूस के होने के बावजूद इंसान कर जाता है, उसमें इंसान को क्या कुछ नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, वो यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त। आइए उन गलतियों का जायजा लेते हैं और अजाला तलाश करते हैं। इन गलतियों को मरहले वार हम तकसीम किए देते हैं वक्त के हिसाब से। वो गलतियां जो हम रमजान से पहले करते हैं कबल रमजान, वो गलतियां जो हम सहरी के वक्त करते हैं मसलन सहरी की गलतियां, वो गलतियां जो हम सहरी से लेकर इफ्तार तक करते हैं, गुफ्तगू का चौथा मरहला इफ्तार के वक्त की जाने वाली गलतियां हैं, पांचवा मरहला वो गलतियां जो हम इफ्तार से लेकर सहरी तक करते हैं, और वो गलतियां जो हम कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, यानी वो जमानो मकान की मोहताज नहीं। सातवें और आखिरी मरहले में वो गलतियां हैं जो हम रमजान के फौरन बाद करते हैं। ये वो सात मराहिल हैं, वो सात मकामात हैं, वो सात जमान हैं कि जहां हम गलतियां करते हैं। आइए रमजान से अब जो गलतियां हम करते हैं उनका जायजा लेते हैं। कबल रमजान की जाने वाली गलतियां, सबसे पहले एक गलती जो इंसान करता है कि रमजान को फूड मेले के तौर पर लेता है, चुनाचे ऐसे लोगों को चांद में भी बर्गर नजर आता है। मंसूबा बंदी की कमी, सबसे बड़ी गलती जो रमजान से पहले की जाती है वो है मंसूबा बंदी की कमी। देखिए रमजान एक बहरे बहकरा है, अगर आप चाहें तो इस समंदर से दो घूंट पानी ले लें और चाहें तो मोती ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जर्फ कितना खाली और कितना बुलंद है। इस रमजान में, बल्कि हर रमजान में, माह रमजान में तीन किस्म के एहदाफ का तयन कीजिए, रूहानी, जहनी, जिस्मानी। रूहानी या तकवे का दूर, यानी लअल्लकुम तत्तकून की मंजिल, आपको तकवा इख्तियार करना है सबसे बड़ा हदफ। दूसरा हदफ जहनी, यानी खुद साजी का जोर, आदतों पर काबू, नींद पर काबू, खाने पर काबू, जबान पर काबू, आंखों पर काबू। नंबर तीन जिस्मानी, यानी सेहत का उसूल, किस किस तरह आप कम खाकर अपने जिस्म को फिट रख सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रहे कि जिस तरह हमारा मीडिया और चंद अफराद माशरे के रमजान को एक डाइट प्लान से तशबीह देते हैं और उनका तमाम तर जोर और तमाम तर तवज्जो इस पर होती है, किसी तरह इस रमजान में अपना वेट रिड्यूस करें, अपने आप को स्लिम बनाएं, यानी गोया लअल्लकुम तत्तकून लअल्लकुम स्लिमून की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि ताकि तुम सलिम सलिम बन जाओ। अल्लाह ताला ये नहीं फरमा रहा, अल्लाह ताला कह रहा है मुत्तकी बन जाओ। आप तकवे का टारगेट रखेंगे, आप रूहानी हदफ रखेंगे, तो जहनी हदफ और जिस्मानी हदफ खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। तो खुदारा रमजान को फकत और फकत सेहत का हदफ, सेहत की मंजिल, सेहत का महीना ना समझे, ये रूहानियत की मंजिल है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जहनी और जिस्मानी, किस तरह एक इंसान आखिरत का हदफ अपने जहन में रखता है तो खुद ब खुद उसको दुनिया के हदफ हासिल हो जाते हैं। फुकदान इस्तकबाल रमजान, रमजान से फकत वो नाराज होता है जो शैतान होता है। बड़े बेआबरू होकर तेरे ऊंचे से हम निकले, ये वो शैतान है कि जो रमजान में 9 रुपये 11 हो जाता है। और याद रखिए कि जिसको इंतजार नहीं होता उसको रमजान की कोई खुशी नहीं होती, और जिसको इंतजार होता है उसको रमजान की खुशी होती है। बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जैसे आपके कोई दूर के रिश्तेदार एयरपोर्ट पर 4 बजे इंतजार के लिए खड़े हों और उन्होंने आपको बतला दिया हो कि मैं आऊंगा और आप एयरपोर्ट पर उनको लेने न जाए, इसका क्या मतलब होगा? आपको उनके आने की कोई खुशी नहीं। इसी तरह आप सुबह उठते हैं और रमजान मौजूद हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रमजान के आने की कोई खुशी नहीं। कम अज कम इस बात की तो खुशी मनाएंगे कि अल्लाह तबारक तआला ने हर सरकश शैतान के साथ 7 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए होते कि वो आपको तंग करने से, आपको बरगलाने से, मुनहरिफ करने से बचाए। लोग पूछते हैं कि मुस्तकबाल रमजान कैसे करें? फकत इंतजार ही इस्तकबाल रमजान है। यानी अगर इंसान इंतजार करे उस तरह जिस तरह ईद का इंतजार किया जाता है, रमजान के 5 रोजे रह गए, 4 रोजे रह गए, 3 रोजे रह गए, आपको खुशी हो रही है? जी हाँ, हमें तो ईद की खुशी है, हालांकि हकीकत में रमजान के जाने की खुशी होती है। इस तरह का इंतजार ईद के लिए क्यों नहीं होता कि शाबान के 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, बस रमजान। खुद इंतजार एक सवाब है, जिस तरह इमाम जमाना का इंतजार खुद एक सवाब है। अपना मौजूए गुफ्तगू रमजान बनाइए, जिस तरह रमजान में आपका मौजूए गुफ्तगू ईद और ईद की शॉपिंग होता है, ड्रेसेस की गुफ्तगू की जाती है, खाने पकाने की रेसिपी की गुफ्तगू की जाती है, तो रमजान में रमजान से पहले रमजान की प्लानिंग और गुफ्तगू से मुताल्लिक गुफ्तगू कीजिए। शाबान के रोजे रखिए और इस तरह रखिए कि आखिरी अय्याम के रोजे रमजान से मुत्तसिल हो जाएं, यही सुन्नत नबवी है। रोए पे हिलाल के हवाले से कहा जाता है कुछ उलमा के नजदीक चांद देखना वाजिब है। सहीफ़े कामला में चौथे इमाम की दुआ 43, सही खुतबा नंबर 43, दुआ नंबर 43 जरूर पढ़िए। इस्तकबाल रमजान की दुआ इमाम की ज़बान मुबारक से खुतबा नंबर 44 की सूरत में सहीफ़े कामला में मौजूद है। जो लोग पढ़ चुके हैं वो दुआ पढ़े, दुआ पढ़े, दुआ का तर्जुमा पढ़े, उसको समझिए, उसके मफहूम को इदराक करें। मुबारकबाद में जिस तरह के SMS आप ईद के लिए देते, 10% भी SMS रमजान के लिए नहीं देते। फहरिस्त आमाल लिखिए कि आपको इस रमजान में क्या क्या करना है। इखलाकियात चार्ट की सूरत में खुद मदरसतुल क़ायम और दीगर मदारिस में ऐसे इखलाकियात चार्ट आपको मिल जाएंगे। उनको टिक कीजिए, काउंट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कि आपने कितनी नेकियां की और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कितना अजर दे सकता है या देगा। अब आइए उन गलतियों की तरफ जो हम सहरी के वक्त करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम सहरी की गलतियाँ कर ही नहीं सकते। क्यों? हम सहरी नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है और अपने आप को यहूद नसारा के मुशाबे बनाना है, क्योंकि आदिज में सहरी की बड़ी ताकीद आई है। पहली गलती जो रमज़ान सहरी के वक्त हमसे होती है वो ये देर तक सोना। जाहिर सी बात है, अगर आदमी देर तक जागेगा देर तक सोएगा। सबसे गैर मुनज़्ज़म खाना सहरी का होता है, हालांकि कहा यह जाता है कि सबसे अहम खाना या वक्त सहरी का है। अगर आप सहरी बेहतर करेंगे तो रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा। जो सोता है वो खोता है, पंजाबी वाला नहीं उर्दू वाला। क्या खोता है? सहरी खोता है, नमाज यक खोता है, नमाज फजर खोता है, सहर सेजी खोता है और अपने काम में वक्त पर पहुंचने को खोता है। अगर खुद नहीं खोता है तो कम से कम ये चीज़ें ज़रूर खोता है। अब आप देखिए सहरी ये इन्हीं के ट्विन टावर्स हैं जो आपको फकत रमज़ान में नज़र आते हैं, उसके बाद पता नहीं ये कहाँ चली जाती हैं। रसूल फरमाते हैं हमारे और दीगर अदियान के दरमियान फ़र्क सहरी का है। याद रखिए कि जब आप कम सहरी करेंगे तो आपकी ग्लूकोज की मकदार जिस्म में कम हो जाएगी, और जब मकदार कम हो जाएगी तो पूरा दिन आपका तकलीफ में गुजरेगा। अगर आपने इफ्तार कम की तो कोई मसला नहीं, आपको सोना है, घर में रहना है। और अगर आपने सहरी कम की तो आप चलते चलते गिर पड़ेंगे, आप अपना काम अंजाम नहीं दे सकते। इसी तरह कुछ लोगों ने कहा है कि नाश्ता बादशाहों की तरह होना चाहिए। एडल डेविस अमेरिका की मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट, तो कम से कम रिवायतों की तरफ नहीं तो कम से कम एक अमेरिकी साइंटिस्ट की तरफ रुख कीजिए और नाश्ता उस तरह कीजिए कि कम से कम आपका रोज़ा बहुत अच्छी तरह गुजर सके। नमाज शब एक बहुत बड़ी बहुत अहम इबादत जो रमज़ान में बआसानी दस्तियाब है। बहाना नमाज शब का होता है करते हैं हम सहरी हैं, हदफ सहरी होता है और नमाज शब छूट जाती है। और हमारे ख्याल में मुहर्रम में भी नमाज शब के लिए इस तरह की आसानी फराहम नहीं होती, बल्कि और हम मुश्किल बना देते हैं। रात गए तक मजालिस अटेंड करना और जिस नमाज के मसाइब हम सुनकर आते हैं उसी नमाज को अदा करना दिन में, कितनी बड़ी बदनसीबी है। कम अज कम रमज़ान में सहरी के लिए आपको जागना है, सहरी के बहाने आप नमाज शब पढ़ लीजिए, जिसके बारे में कुरान में आया है कि बस किसी नफ्स को नहीं मालूम है कि उसके लिए क्या क्या उनकी चश्म का सामान छुपा रखा है जो उनकी आमाल की जजा है। सूरह सजदा आयत नंबर 17। तो इमाम फरमाते हैं कि बंदा जो भी नेक अमल करता है उसका सवाब कुरान मजीद में मौजूद है सिवाय नमाज शब के सवाब। और नमाज शब क्या, कुछ लोग तो यहाँ नमाज फजर अदा कर देते हैं और उनको अम्मी की बजाय फिर बिल्ली आके उठाती है। सहर खेली देखिए खुद बड़ी नेमत है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीजन की मकदार कहते हैं मैक्सिमम होती है, वैसे ऑक्सीजन की मकदार फजा में 20% होती है और कराची जैसे शहर में पॉल्यूशन ज्यादा शहर में ये मकदार 10 से 15% रह जाती है। कसाफतें कराची की कसाफतों को, शहरों की कसाफतों को, पॉल्यूशन को कौन वापस से कौन वापस है। शबनम के सबब ये कसाफतें ज़मीन में बैठ जाती हैं, फजा खुशगवार होती है सुबह के वक्त। कुरान में ऐसे वक्त को इस्तग़फ़ार का वक्त कहा है और ऐसे वक्त सोना मकरूह अमल है। कहते हैं कि इमाम के ज़हूर का वक्त यही सुबह का वक्त, और जब पूछा गया जन्नत में किस तरह का मौसम होगा तो बतलाया गया कि फजर से लेकर शम्स के तुलू होने तक का वक्त जन्नत में होगा। इमाम के वक्त को जन्नत के वक्त को अभी से तेज करना शुरू कर दीजिए। खुद सुबह उठना एक ग्रेट जॉब है और जॉब में रिजक में इजाफे का सबब है। सुबह के वक्त सोना रिजक को रोकता है, हदीस रसूल है। कहते हैं कि अमरीकी सेल्समैन से पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, उसने कहा मैं तमाम अमरीकियों से 1 घंटा पहले उठता हूँ। जो शख्स 1 घंटा पहले उठकर अपनी दुनिया बना सकता है तो क्या एक मोमिन 1 घंटा पहले उठकर नमाज शब पढ़कर अपनी आखिरत और दुनिया दोनों नहीं संवार सकता। इसी तरह कराची के कारोबारी शख्स को कहा गया कि आपकी कामयाबी का राज, उन्होंने कहा कि मैं तमाम दुकानदारों से 1 घंटा पहले दुकान खोलता हूँ। तो खुद और अपने घर के मर्दों को सुबह उठने की तहसीसी की आदत डलवाइए और ये आदत आसानी से रमज़ान में डल सकती है। अब आइए सहरी से लेके इफ्तार के वक्त तक क्या गलतियां हम सरजद करते हैं। माहिर रमजान में शायद ही कोई शख्स हो जो घड़ी 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 ना देखे। चेहरे पर 12 बज रहे होते हैं लेकिन जी चाह रहा होता है कि जल्दी से 7:30 बज जाए। ये इंग्लैंड के लोग हैं जहाँ पे रोज़ा 4:30 बजे 4:35 में होता है। तो इंसान किसी तरह कोशिश करता है कि बस रोजे का वक्त गुजर जाए और इफ्तार का वक्त आ जाए। कुछ लोग तो बिस्तर लेके घूमते हैं, मंजी किस्से ढावा कि मैं किस कब कहाँ किस जगह अपना बिस्तर जो है डालूं और सोऊं। सुस्ती का वर्ल्ड कप हो रहा होता है, ऐसे लोगों के लिए अर्ज है जंगे बदर जंगे खबर फतेह फैसा फतेह मक्का इसी महीने में हुए। यानी यूं समझ लीजिए आज शख्स सो रहा होता है और 1 2 3 किया जाता है, उसके बाद जो सबसे देर में उठता है वो जीत जाता है। हर किसी की यही कोशिश होती है कि आदमी सबसे देर में उठे। आराम तलबी से गुरेज कीजिए, जिस तरह शाबान और दीगर अय्याम आपने गुजारे हैं उसी तरह माह रमजान भी गुजारिए। यही असल रोज़ा है। और अगर आपको वाकई थकन और नींद का सामना है तो सीधे तरीके से इस्लामी तरीके से सुन्नत नबवी अदा करते हुए कैलूला कीजिए, जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल सेहत के लिए मुफीद है। और अगर जागे भी होते हैं तो गुस्सा कर रहे होते हैं, पूछा जाए क्यों तो बताया जाता है कि हमारा रोज़ा है। लेकिन गुस्सा जो है वो पागलपन का दौरा है रिवायत के मुताबिक, क्योंकि इंसान बाद में निदामत महसूस करता है। अगर वो निदामत महसूस ना करे तो इसका मतलब इसका पागलपन मुस्तकिल हो चुका है। खुदा कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। और हमारा क्या मसला है, हम गुस्से का इजहार करते हैं, बताने के लिए हमारा रोज़ा है। हालांकि रोज़ा अगर है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे और अगर रोज़ा नहीं है तो आप गुस्सा करेंगे। तो गुस्से में तो गुस्सा रफू रोजे में गुस्सा रफू चक्कर हो जाना चाहिए बजाय इसके कि वो आपके ऊपर तारी हो। और एक और बात याद रखिए, जो लोग सहरी से परहेज करते हैं उनके जिस्म में उनके ब्रेन में ग्लूकोज की कमी हो जाती है और यही ग्लूकोज की कमी इरिटेशन चिड़चिड़ाहट का सबब बनती है। और कुछ लोग खाना पीना तो बंद करते हैं लेकिन गुनाहों का तसलसल जारी रखते हैं। रिवायतों में आया है कि रमजान को रमजान कहा ही इसलिए जाता है कि लफ्ज रम्ज से निकला है, और रम्ज का मतलब है जला डालना। तो ये महीना गुनाहों को जला डालता है। मौला को नसीहत करते हुए रसूलुल्लाह फरमाते हैं, ए अबुल हसन, इस महीने में सबसे अफजल अमल अल्लाह तबारक तआला की हराम करदा चीजों से दूर रहना है। खाना पीना तर्क करना रोजा नहीं है, असल असल रोजा है गुनाहों से अपने आप को दूर रखना। और किसको फरमा रहे हैं, मौला अली को। तो फिर हम मोमिनीन को किस हद तक शिद्दत से गुनाहों से दूर रहने पर मुसर होना चाहिए। देखिए याद रखिए, सबसे बेहतरीन रोज़ा वो है कि जिसमें गुनाह दूर की बात दिल में कोई फासिद ख्यालात भी ना आए। दिल का रोज़ा जबान के रोज़े से और जबान का रोज़ा पेट के रोज़े से बेहतर है। यानी आम लोगों का रोज़ा क्या है कि वो खाने पीने से परहेज करें, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रोज़े की, 50% पासिंग मार्क्स। आवाम से रोज़ा क्या है, वो गुनाहों से परहेज करें। अगर आपने खाने पीने से भी परहेज किया, गुनाहों से भी परहेज किया तो आप गुड से बेटर हो गए। और अगर आप बेस्ट का दर्जा हासिल करना चाहते हैं तो अपने दिल में आने वाले ख्यालात से भी गुरेज करें। ईद आएगी तो मैं ये करूँगी, ईद आएगी तो मैं ये करूँगा। यानी जो गुनाह आप नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे या शर्मा रहे, उन गुनाहों को आपने चेक लिस्ट में लिख लिया है कि ईद के बाद रमज़ान के बाद करूँगा। याद रखिए कि दिल में नेकियों के फूल नेकियों के गुलाब उस वक्त तक नहीं खिल सकते जब तक आप दिल में मौजूद गुनाहों को जला ना डालें। अगर इसके बावजूद गुनाहों का तसलसल जारी रहा तो यू आर द लूजर। कितने ज़्यादा रोज़ा रखने वाले हैं कि इनको रोज़े से सिवाय भूख और प्यास के कोई फ़ायदा नहीं होता, और कितने ज़्यादा इबादत करने वाले हैं जिनको इबादत से सिवाय थकान की कुछ हासिल नहीं होता। देखिए बड़ा बदनसीब शख्स है वो जो रोज़े ना रखे, और उससे भी बदनसीब वो शख्स है जो रोज़े तो रखे लेकिन रोज़ा रखने के बावजूद रोज़े के फ़वाद हासिल ना कर पाए। मसलन जो रोज़ा रखने के बावजूद गीबत कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हराम खा रहा है, नज़रों को हराम चीज़ों को देखने से नहीं बचा रहा है, कानों को हराम चीज़ों के सुनने से नहीं बचा रहा है, तो ये सबसे बदनसीब है कि तूने रोज़ा ही क्यों रखा। अगर रोज़ा करने के बावजूद भी तुझको ये तमाम चीज़ें करनी थी तो तेरा रोज़ा अब है। जो कम तरीन लहव लाइब या फजूलियात है जिस पर इंसान राजी हो जाता है वो है सोना, इंडोर गेम्स, बातें करना, टीवी देखना और कुछ ना करना। अगर किसी से पूछे आप क्या कर रहे हो तो वो क्या कहता है, कुछ नहीं कर रहा। ये हमारा कौमी मशगला है, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई कुछ तो करो, पढ़ो लिखो, इबादत करो, नहीं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा भाई खेल लो, नहीं खेलना भी नहीं है। तो पता नहीं वो क्या सोच रहे होते हैं, पाकिस्तान बना रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। बड़े बूढ़े भी इस गेम में शरीक हो जाते हैं, तो बचपन में खेले जाने वाले तमाम इंडोर गेम्स उनको याद आ रहे होते हैं। तो रमजान में एक ही सपने खड़े हो गए, महमूद अयाज वाला मामला होता है कि बड़े बूढ़े बच्चे सब एक ही जगह बैठ के लूडो और ओनो खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान को यूएनओ ने डकोया और हमको ओनो ने, दोनों यूएनओ से लिखे जाते हैं। हल क्या है? दुरुस्त सुनिए, माशाल्लाह बाकी दुरुस्त भी ऐसे इंटरेस्टिंग हो गए मैं समझता हूँ कि आप इसको सुनकर सोएंगे नहीं, हालांकि कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। मुताला करें, अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो इस्लामी फिल्में देखिए, इंजॉय कीजिए, उतना ही एडवेंचर और उतना ही इंटरेस्ट आपको नजर आएगा जितना हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में है। लेकिन आपके ईमान में इजाफे का, आपकी मालूमात में इजाफे का सबब भी बनेगा। ये करके देख लीजिए, रोजाना एक फिल्म रखिए, किराए पे ले आइए या खरीद लीजिए या इंटरनेट पर डाउनलोड कीजिए, लेकिन रोजे को जाया ना करें फजूलियात में पढ़कर। जायज तो है लेकिन आपकी रूहानियत को यकीनन ये कम कर देंगे। इफ्तार के वक्त लोगों की ये हालत होती है, काश इफ्तार के बाद भी हो इज्जो इंकसारी की शक्ल कि कब अजान हो हम सजदे में गिरें और मुंह से खजूर उठाकर खाएं। तो खुदा ना ऐसे वक्त में इफ्तार के सामने ना बैठे, लगेगा कि इफ्तार आपका मुंह चिढ़ा रही है, आप कुछ नहीं कर सकते। दुआ उसकार करें, नाफिला नमाज पढ़ें, तिलावत कुरान करें। सबसे अहम इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है घर वालों की मदद करें। मर्द हजरात से दस्तबस्ता गुजारिश है कि अपनी खवातीन के कामों में उनकी इफ्तारी को हेल्प आउट करें, कोऑपरेट करें, क्योंकि घर के कामों में मदद देना है। 1000 हज, 1000 उमरा, 1000 बीमारों की तीमारदारी, 1000 नाफिला नमाजों से बेहतर है। तो कूलर भर के रख देना, फर्श सजा देना, प्लेटें उठा के रख देना, ये छोटे छोटे काम हैं जिसमें आप घर वालों की मदद कर सकते हैं। और घर वालों की मदद नहीं, एक रोज़ेदार की मदद हो रही है, तो ऐसे काम ज़रूर करें ताकि आपको हज उम्रे का सवाब मिले। अब आइए इफ्तार की गलतियों पर। इफ्तार की गलतियां इतनी है जितना इफ्तार के खाने और डिशेज। आपने एक ज़माने में सुना होगा डॉक्टरों के पास जाते हैं टेस्ट करवाने, डॉक्टर एक लिस्ट लेते हैं, 2-4 टेस्ट पे टिक लगाते हैं और कहते हैं ये टेस्ट करवा लो। आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, 2-4 टेस्ट पे क्रॉस लगाते हैं और कहते हैं बाकी सब करवा लो। तो बस 2-4 चीज़ों के, जिसमें सब्जियां पेश पेश हैं, तमाम चीज़ें चाहता है कि चाहते हैं हम कि हमारे दस्तरखान पर मौजूद हों। सुस्ती का वर्ल्ड कप तो देख लिया आपने, अब खालों का ओलंपिक भी देख लिया। शुरुआत मशरूबात तलनियात फातिहात, ये 4 आइटम्स हैं जो हमारे खान पे दस्तरखान पे सजे हुए होते हैं। कोशिश कीजिए कि बाजार की चीज़ों से परहेज करें, तजर्बात से गुरेज करें और इफ्तारी को मुख्तसर रखिए। आइए ये 4 चीज़ें जो हम इफ्तार में रखते हैं उनको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एक नज़र हम देखते हैं। शुरुआत के लिए बेहतरीन चीज़ खजूर है, जिसके बारे में कहा जाता है इसमें आयरन, ग्लूकोज और कैल्शियम शामिल है। पाकिस्तान में खवातीन को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट कॉमन एनीमिया है, उनकी कमी जिसे कहते हैं। और खजूर में इतना आयरन होता है कि अगर आप रोज़ाना 5 खजूरें भी खाएं तो 30 दिन बाद आपका हीमोग्लोबिन लेवल 10 से ऊपर हो जाए। इसमें ग्लूकोज शामिल है जो हाइपोग्लाइसीमिया आपको इफ्तार के वक्त हो रहा होता है उससे बचाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। जो खवातीन अधेड़ उम्र में बुढ़ापे की वजह से कैल्शियम की कमी का शिकार हैं, बजाय इसके कि कैल्शियम के सिरप और टैबलेट लें, वो कैल्शियम से भरा हुआ, कैल्शियम से लबरेज खजूर का थाल खाएं। नमक से रोज़ा खोल सकते हैं आप, क्योंकि उस वक्त आप लो ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, लेकिन जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग नमक से गुरेज करें। नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि दौरान खून को ज़्यादा करता है। इसके अलावा अगर ये तमाम चीज़ें भी मौजूद ना हो तो किसी भी निजी चीज़ से रोज़ा इफ्तार करना मुस्तहब है। एक अहम चीज़ मशरूबात के हवाले से, जो लोगों को हजम नहीं होती, समझ में नहीं आती या करने का जी नहीं चाहता, लेकिन जो हकीकत है कम अज़ कम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और ख़ुद इस्लाम भी इसकी हिमायत करता है, वो ये कि इफ्तार में ठंडा पानी या ठंडा मशरूब पीने से गुरेज करें। क्यों? देखिए, आपने नोट किया होगा कि कभी आपको जख्म लगा हो, चोट लगा हो आपके बच्चे से, तो आप उस पर बर्फ की टिकोर करते हैं। क्यों? बर्फ का रखना उस जगह मौजूद खून की नालियों को सुखेड़ देता है। खून की नालियां जब सुखड़ती हैं तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो ब्लीडिंग कम होती है। इसी तरह जब ठंडा पानी आप पीते हैं तो मेदे में खून का बहाव कम हो जाता है, और जब मेदे में खून का बहाव कम होगा तो जो भी गिज़ा खाई जाएगी वो स्टक जैम हो जाएगी और हजम जज्ब नहीं होगी। और जब आप कोई गर्म चीज़ पीते हैं, खाते हैं, अरब ममालिक में ये आम है, गर्म चीज़ से, गर्म मशरूब से, गर्म पानी से, गर्म सूप से रोज़ा खोलना या खजूर के बाद गर्म सूप पीना, कि ये आपके खून के दबाव को बढ़ा देता है। और जब खून का दबाव मेदे की तरफ होता है तो वो हर चीज़ को बआसानी हजम कर सकता है। और इसका उल्टा करेंगे आप, मतलब ठंडा पानी, ठंडा मशरूब पी लेंगे, तो क्या होगा? मेदे में पकोड़ा हल्कान और परेशान होगा कि मुझे कोई रिसीव करने नहीं आया, ब्लड फ्लो बहुत कम है, मैं कहाँ जाऊँ। जितना अंकल आते हैं एयरपोर्ट पर, उनको कोई लूट के ले जाता है टैक्सी ड्राइवर, तो पकौड़े के साथ भी यही होता है। जब तक आप खाते पीते रहेंगे आपको कुछ भी नहीं होता। जहाँ आपने ठंडा पानी या मशरूब पिया उस वक्त आप पेट पकड़ के बैठ जाते हैं और पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। तो इसका हल ये है कि अगर आप गर्म पानी नहीं पी सकते, जो मौला अली की सुन्नत था, सुन्नत है रोजे के वक्त, तो गर्म मशरूबात का इंतखाब कीजिए, मसलन चाय, ग्रीन टी, सूप। और ज़रूरी नहीं कि सूप जो है वो चिकन कॉर्न सूप हो, वो दाल का सूप भी हो सकता है, गेहूं का सूप भी हो सकता है, कॉर्न का सूप भी हो सकता है, यखनी। इसके अलावा एक हरीस नाम की डिश आपने सुनी होगी जो अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, उसको अगर आप डाइल्यूट कर दें तो खुद ये एक सूप की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। अगर आपको ठंडा पानी पीना है तो कोशिश कीजिए कि वो इफ्तार के बाद पीजिए। ये है वो चीज़ें जो आपकी दिल पसंद चीज़ें हैं, यानी फ्राइड आइटम्स, पकौड़े, दही बड़े, छोले, रोल, कटलेट और कचौरियाँ। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग हमारा जुलूस निकाल देंगे कि भाई यही चीज़ें तो हैं खाने की, और कौन कौन बदबخت है जो ये चीज़ें जो है वो ना खाए। देखिए, आप ये खाएं, कोशिश करें कि कम खाएं, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो इसमें डाला जाने वाला घी वो कम कर दें या आधा कर दें, उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको तनाव फरमा सकते हैं। यानी इस्तेमाल करें मगर एहतियात से। ये वो चीज़ है जो सबसे कम खाई जाती है और जिसको सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, फ्रूट। लेकिन फ्रूट मस्नूई फ्रूट में उस वक्त तब्दील हो जाते हैं कि जब फ्रूट फ्रूट चाट में तब्दील हो जाए। क्यों? इसमें मायोनीज है, इसमें क्रीम है, आजकल तो माशाल्लाह फ्रूट चाट डेल मोंटे की और दूसरी प्रोडक्ट्स की सूरत में मौजूद है, और उसमें आधी फ्रूट चाट मौजूद होती है, थोड़े बहुत जिसे कहते हैं कि उसमें फ्रूट डाल के उसको आप चाट बना देते हैं। यकीन कीजिए, फ्रूट चाट जिसमें माशाल्लाह मिर्चें पेश पेश होती हैं, हम लोगों ने तो बिस्किट में भी मिर्चें डलवा दी। KFC वाले आए, मैकडोनल्ड वाले आए, सब लोगों ने अपना अपना बर्गर और टोस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, स्पेशली कराची वालों के लिए स्पाइसी टोस्ट, स्पाइसी जिंगर बर्गर, बिस्किट तक आ गया, मतलब गुलाब जामुन और चमचम की कमी है मिर्चों की। तो खुदारा फ्रूट चाट ना खाइए, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट खाइए और एज इट इज खाइए। हाँ, अगर केला और नारियल है तो छिलके छिलके उतार लें, इसमें कोई फवाद नहीं, लेकिन फ्रूट चाट बनाने से परहेज करें। इफ्तार से लेके सहरी तक हम क्या गलती करते हैं? खाना, यह मसला कश्मीर है हर घर में। खवातीन को इफ्तारी पकाते वक्त इतनी परेशानी नहीं होती कि हम क्या पकाएं, खाना पकाते हुए सोचती खाना क्या पकाएं। उसूलन तो खाना पकना ही नहीं चाहिए जब इफ्तारी इतनी है। अगर आपको इफ्तार के बाद खाना खाना है तो इतनी इफ्तार कीजिए। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो सर हम लोग खाते पीते घराने के लोग हैं, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स है तो कीप इट अप टू यू। और बहुत ज़्यादा परेशान है तो हमारे घर आके कभी एक दिन नाश्ता या इफ्तार कर लीजिए। आप लोग कितने बड़े लोग हैं, क्या प्रेसिडेंट है? वैसे पाकिस्तान में किसी को प्रेसिडेंट बोल दो तो गिरबान पकड़ लेता है कि तुमने मुझे प्रेसिडेंट कैसे कह दिया। देखिए, ये है एक प्रेसिडेंट की इफ्तार। लग रहा है कि अहमदीनेजाद दोराजी के फुटपाथ पर सैलानी के दस्तरखान पे बैठे हुए। सूप है, यखनी है, रोटी है, जूस है, और टिश्यू पेपर है, हम जैसे लोग बैठे हैं आंसू बहाए तो उनके लिए बिरयानी है शायद उसकी तरफ, उसने जन से अगर काम लें तो ये इशारा करके कह रहे हैं उसको ले जाओ ये इजाफी है। तो ये है एक प्रेसिडेंट का इफ्तार और एक हमारा इफ्तार। अच्छा कुछ लोग तो माशाल्लाह ऐसे मिल जाएंगे आपको, पाकिस्तान में मिल जाएंगे और दुनिया में भी, जो अगर खाना खाते हैं तो इफ्तार को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। इफ्तार बेचारी कोने पे सहनी भी बैठी हुई होती है और वो अपना डट के खाना, रोटी चावल जो भी खाना खाना हो खाते हैं। तो फर्श नशीनों की कमी नहीं गालिब, लेकिन दूसरी तरफ इसराफियों की कमी नहीं गालिब। तो खुदारा अगर आप कम नहीं खा सकते, एक एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते तो एक्सट्रीम पे ना जाए। तो पहली मर्तबा तो ये देख के हैरत होती है, आदमी सोचता है कि ये है क्या, तो ये भी खाना है और ये कौन लोग हैं, ये भी इसी सैयारे पे रहने वाले इंसान है, वो भी सैयारे पे रहने वाला इंसान है। तो ये देखिए ये फर्क है लाइफ स्टाइल में। तो रवायात में आया है कि जो लोग मियाना रवी का रास्ता इख्तियार नहीं करते उनको इसराफ हलाक कर देता है। तो ये है वो इसराफ जो आप रमजान में करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। और फिर इफ्तार के बाद सैंडविच हाथ में दबोचे, जो भी सामने से गुजरता है दुआ करते हुए अब तो आपको खुदा ही उठाएगा। और होता भी यही है, शहरी में अजान के वक्त आँख खुलती है या अजान से पहले कि अब खाने का वक्त आ गया। तो बहरहाल हम लोगों में से बहुत से लोगों का यही कुछ हाल होता है, पेट जो कभी तिनका था वो मटका बन जाता है। देखिए देर तक जागना ये तकरीबन हर लोगों का कल्चर बन गया है, 12 बजे तक जागना, 1 बजे तक जागना। खारा दार तो माशाल्लाह नंबर वन है, पूरी रात जागते हैं। हमने कहा माशाल्लाह आप लोग सबसे ज्यादा सवाब कमाते हैं, कहेंगे सर भाकड़ा होटल पे कैसा सवाब। तो वो होटल में है या जैसे कहते टिक्के वाले की दुकान पर है, गली में नाइट मैच हो रहे हैं, मतलब लड़कों ने भी नाइट मैच जो है वो गलियों में खेलना शुरू कर दिया है और रात गए तक, और सुबह जो है वो आप सो रहे होते हैं। सऊदी अरब अगर किसी का जाना हो, अरब कंट्रीज, तो उसने देखा होगा वहाँ पे लोग रात भर जागते हैं, रात भर शॉपिंग सेंटर खुले रहते हैं और दिन भर सो रहे होते हैं। मुझे बताइए अगर आप फजर से लेके मगरिब तक सोते रहें, रोज़ा तो हो जाएगा आपका, तो क्या आपको वो सवाब मिलेगा, लअल्लकुम तत्तकून की मंजिल। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है अगर यही है तो ठीक है आप यही रखिए, बहुत ही कोई बेवकूफ़ होगा जो इस तरह का लाइफ स्टाइल रखे, लेकिन रमज़ान में आप ये लाइफ स्टाइल क्यों अडॉप्ट कर दें। ठीक है थोड़ी बहुत थकन भूख की वजह से नींद आ जाती है वो ज़रूर लीजिए, लेकिन मुसलसल आराम करना और बिल्कुल अपने आप को अपसाइड डाउन कर लेना। ईरान में हमने सुना है कि रमज़ान में फजर से ऑफिस खुल जाते हैं और जोहर में लोग घर चले जाते हैं, ये है लाइफ स्टाइल बेहतर, बजाय इसके कि आप अरब कंट्रीज की तरह रात भर जागे और दिन भर सोए। कुरान पढ़िए, अगर आपको जागना है तो वो बेहतर काम कीजिए, कुरान पढ़िए, मुताला कीजिए, दुरूस में शिरकत कीजिए, राउंड टेबल या खुदी जो भी दीनी महाफिल होती है, अगर जागना है तो खुदारा इन कामों में हिस्सा लेकर जाइए ताकि आपको कोई जागने का सवाब भी मिले। लेकिन तो होता क्या है 1-1.5-2 बजे तक जागते हैं और एक आंख खुली रख के बिस्तर पे चले जाते हैं, एक आंख से सोते हैं, एक आंख से जागते हैं कि पता नहीं कब सहरी हो जाए। तो बाकिया रात 2 घंटे 2.5 घंटे जो बचते हैं वो भी आपके जो है वो जागने की नज़र हो जाते हैं, और जब एन सहरी का वक्त आता है तो इंसान सो जाता है। और आपको पहले बताया जा चुका है जो सोता है वो खोता है। खवातीन के हवाले से हमें एक बहुत बड़ी शिकायत है शॉपिंग के हवाले से कि खवातीन के लिए रमज़ान शॉपिंग का महीना है, शहरो रमज़ान अल्लज़ी शहरो शॉपिंग। तो बाजार के हवाले से अहादीस में क्या आया है, बाजार ज़मीन के बदतरीन टुकड़े और शैतान के मैदान। अच्छा एक जगह अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल फितनतुन निसा की भी दुआ है, ए अल्लाह मुझे औरतों के फितने से बचा। अच्छा हम ये बता दें आप जैसी औरतों के लिए नहीं है, उन औरतों के लिए जो वाकई फितना है, बेपर्दा है, बेहिजाब है, फितना परवर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि फितना परवर औरत, बेहिजाब औरत दुनिया में खुदा के बदतरीन ठिकानों में एक ठिकाने पे बैठी हो, चल फिर रही हो, तो वो कितना फितना बर्बाद करेगी। इसीलिए जो लोग सुबह रोज़ा रखते हैं, रात को शॉपिंग सेंटर में गुजारते हैं, किसी भी रूहानियत का जिसे कहते हैं कि असर उन पर उन पर नहीं होता। देखिए बेहतरीन वक्त शॉपिंग का क्या है, रमज़ान से पहले कर लीजिए, रमज़ान से पहले, रमज़ान तक शॉपकीपर्स को हिदायत होती है कि ईद पे जो लोग शॉपिंग के लिए आएंगे उनके लिए फ्रेश माल रखना है, इसलिए पुराना स्टॉक रमज़ान से पहले पहले ख़त्म करना होता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो तारे रोड और भादुराबाद, क्लिफ्टन और हैदरी की मार्केटों को देख डालिए, इस वक्त हर जगह सेल लगी हुई है जो पहली रमजान तक रहेगी, उसके बाद रमजान का ईद का स्टॉक आ जाएगा, सेल नहीं लगे। बेहतरीन वक्त है रमजान से पहले ईद की शॉपिंग, नहीं कर सकते तो रमजान में कीजिए लेकिन दिन के वक्त कीजिए, और दिन में भी बेहतरीन वक्त इफ्तार से पहले का है। एक आध दिन, दो दिन निकाल लीजिए रमजान में, अगर आपने नहीं की है रमजान में, रमजान के आने तक शॉपिंग, क्योंकि उस वक्त भूख दुकानदारों की उरूज पर होती है और वो तकवे के आला दर्जों पर होते हैं, चनाचा झूठ और हराम कमाई अमूमन लोग परहेज करते हैं, शॉपिंग सेंटर और दुकानें खाली होती हैं, बड़ा आसानी आप जिसे कहते हैं वहां पर शॉपिंग कर सकती है, वरना रात में मर्दों के शाना बशाना शॉपिंग करनी पड़ जाती है। अगर आपको बाजार, अच्छा पहले जमाने में आपने सुना होगा ऐसे 10-20 साल ऐसे शॉपिंग सेंटर आपको पाकिस्तान से बाहर नजर आते थे, लेकिन ये दोनों शॉपिंग सेंटर जो है इनकी शक्लें जो आपको नजर आ रही हैं वो कराची में पाकिस्तान में मौजूद है। डॉलमेन सेंटर है, द फोरम है, मैक्रो का जो जनरल स्टोर है, इस तरह के दीगर दुकानें जो हैं, द पॉइंट है, ये तमाम जो शॉपिंग सेंटर बड़े बड़े जो एक ज़माने में दुबई में यूरोप में हुआ करते, उस तरह के शॉपिंग सेंटर यहाँ खुल गए जहाँ पे सिर्फ विंडो शॉपिंग यानी फकत जाके चलकर वापिस आ जाना, यही खुद लोगों के लिए एक तफरी होती है। अगर आप जाए उसके लिए कहा गया है कि बाजार गलती और गफलत का मुकाम होते हैं, लिहाजा जो शख्स वहाँ एक मरतबा खुदा की तस्बीह करता है अल्लाह उसके लिए 10 लाख नेकियाँ लिख देता है। देखिए अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए ऑप्शन खुला रखा है, अगर आपको मजबूरी है जाने की तो कम से कम ये काम कीजिए कि अपनी जबान पर जिक्र इलाही रखिए, 10 लाख टाइम, 1 मिलियन टाइम ज्यादा सवाब मिलेगा आपको। अब आइए मुतफर्रिज वक्तियों की तरफ जो रमजान में करते हैं, जो किसी जमान और मकान की मोहताज नहीं, कभी भी किसी वक्त नहीं कर सकते। देखिए रमजान क्या है, रोजा क्या है, भूखा रहना नफ्स को काबू रखने और आदतों को तोड़ने में बेहतरीन महाविर होता है, मौला की रिवायत है। और याद कीजिए अगर विकिपीडिया पे अगर आप जाएं तो आप देखेंगे कि आदतों के हवाले से विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि आदतें 21 से 30 रोजे के 21 से 30 दिनों में पैदा होती हैं, और आप देख लीजिए हमारा रमजान, माह रमजान 21वें रोजे को पीक पर होता है, शबे कदर, मौला की शहादत और आखिरी असला तीनों 21 रमजान में, और अगर 21 रमजान में आदत पे कंट्रोल नहीं हुआ तो कम अज कम 29-30 रमजान में हो जाता है। अगर शुरू में मुश्किल पेश आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद रखिए कि 21 से 30 दिनों में आपकी आदत पुख्ता हो जाएगी अच्छे कामों की, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। एक बच्चे ने दादा जान को पिज्ज़ा दिया, दादा जान ने पिज्ज़ा खाया, थूक दिया, ये कैसा खाना है, ये कैसा पिज्ज़ा, तो बच्चे ने कहा दादा जान पिज्ज़ा का टेस्ट डेवलप होते होते टाइम लगेगा। तो आपका भी टेस्ट डेवलप होते होते नमाज इशब का, नाफिला का, मुस्तहबात का, अज़कार का टाइम लगेगा, उसको टाइम दीजिए, आदतों को डेवलप होने में टाइम लगता है। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो अपनी सभी सालगिरह जो है उस पर जलाई जाने वाली मोमबत्ती से अपनी सिगरेट जलाते हैं। ऐसे मनाजिर पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन करीब शायद नजर आ जाए, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ की बड़ी बूढ़ियाँ जो है पान इसी तरह खाती हैं, अपनी सभी सालों की पे वो पान खाते भी आपको नजर आएंगे, तमाम नहीं लेकिन चंद। सिगरेट के हवाले से याद रखिए 200 कैंसर के मादे इसमें मौजूद है। शीशा जो एक मॉडर्न हुक्के की शक्ल है, एक घंटा अगर आप शीशा पिए तो 100 सिगरेटों के बराबर है। पान हलक का कैंसर करता है। अभी बात हो रही थी किसी ने कहा सिगरेट जो है वो गैस गैस को दूर करता है, और पान जो है वो तालिबान कोई बात बताई थी, हमें खुद भी नहीं याद रही, हैरत भी हुई कि सिगरेट और पान को लोग जो है वो पॉजिटिव लेते हैं और कहते हैं कि ये इंसान के सेहत के लिए बेहतर है। तो शराब भी पीजिए, शराब भी बेहतर है लेकिन कम पीजिए, ज़्यादा पियेंगे तो सेहत ख़राब हो जाएगी। तो कुछ कुरान में है कि इसका नुकसान इसके फ़ायदे पर गालिब है, इसीलिए मना की गई है। गुटखा, नेमपुरी, मानिंग चंद, अजीब गरीब लोगों ने नाम रख लिए हैं और मुँह में कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो जबान चलती रहे, मतलब अगर किसी की जबान ना चले तो समझ लीजिए मुंह में गुटखा या पान मौजूद है। तो ये चीजें खा के पाकिस्तान के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो हलक का कैंसर होता है वो सबसे ज्यादा पान और गुटखे वगैरह खाने की वजह से होता है। एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानी 11 अरब रुपए की चाय हड़प कर जाते हैं, शायद इस वजह से कि पाकिस्तान में हर शख्स काम करने के बाद चाय पानी के पैसे मांगता है। दीगर आदतें सोना, सुस्ती, बदनज़मी, इन पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ये भी एक कब्जान का हदफ है। सोने पर कंट्रोल, जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं वो रमज़ान में इस आदत को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन देखा ये क्या है कि उल्टा इस आदत को मजबूत बिगाड़ा जाता है रमज़ान में ज़्यादा सोकर। डिसिप्लिन रमज़ान में जितना मेंटेन कर सकते हैं आप कीजिए, और उसको रमज़ान के बाद भी मेंटेन कीजिए। यकीन कीजिए ये आदत आपके रमज़ान के बाद बहुत काम आएगी। टाइम मैनेजमेंट, हर काम को अहम समझना, घर वालों को अहमियत देना। घर में देखिए लोग किस तरह एक साथ बैठे हुए होते हैं, खुशगप्पियाँ कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बातें सुन रहे होते हैं, छोटे छोटे कामों पर तवज्जो देना, ये आपको इंतज़ामी सलाहियतें जो पनपने का जो मौका मिलता है वो रमज़ान के दिनों में मिलता है। एमरजेंसी के लिए अपने आप को तैयार रखना रमज़ान का दूसरा नाम। अब आप देखिए ना, सुबह एकदम से हड़बड़ा के आपको उठा दिया जाता है 4:30 बजे, 4 बजे नींद में आपको खिलाया जाता है कि नहीं भूख नहीं भी लग रही तो भी खाओ। भूख में आप काम कर रहे होते हैं, दूसरों का ख्याल रख रहे होते हैं रमज़ान के बावजूद, क्योंकि आपका भी रोज़ा होता है, सब्र की आदत। ये सब क्या है, देखा जाए तो एक बोहरानी कैफियत से तैयार होने की ट्रेनिंग है। और सबसे बड़ी बोहरानी कैफियत जो आने वाली है वो है इमाम ज़माना का ज़माना। तो 100 बातों की एक बात, नफ्स की मुखालिफत सबसे बड़ा बुहरान है जिसको आपको जिससे आपको निपटना है। रमज़ान के बाद भी इसको जारी रखिए। लोग अमूमन कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देते, न सिर्फ कुरान बल्कि तौरात, इंजील, ज़बूर बतरतीब 6, 12 और 18 रमज़ान को नाजिल हुई। एक आयत को पढ़ने का सवाब एक कुरान के बराबर है। न सिर्फ कुरान पढ़िए क़िरत के साथ, अच्छी क़िरत के साथ, बल्कि तर्जुमे, तफसीर, तजवीद और हिफ्ज के साथ कोशिश कीजिए इस रमज़ान में चंद इजाफी आयात याद करें। तफसीर पर तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए कुरान की आयतों पर। और ये वो महीना है जिसके बाद शायद आपको कुरान से लगाव का मौका ना मिले। मुस्तहबात जो आपने इस रमज़ान में शुरू किए, मसलन सदका देना, अज़कार, दुआएं, तिलावत कुरान, नाफिला नमाजें, जो जो मुस्तहबात आपने जारी किए हैं उनको जारी रखिए रमज़ान के बाद। इबादत रमज़ान, रमज़ान के फौरन बाद, रमज़ान और हमारे दरमियान इतनी बड़ी खलीज आ जाती है और रोज़े हमारे लिए इतने अजनबी बन जाते हैं, इतने नाशनाई आ जाती है कि रोज़ों की तरफ देखने का जी ही नहीं चाहता। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। 29वीं और 30वीं शब को आप दोबारा, जिसे कहते हैं कि आप रोज़ों से नाशना हो जाते हैं। मुस्तहिब रोज़े, अगर रमज़ान के रोज़े आपको फ़ायदा दे सकते हैं तो क्या शव्वाल के रोज़े, ज़िलहज के रोज़े, ज़िलक़द के रोज़े, मुस्ताहब रोज़े आपको फ़ायदा नहीं दे सकते? क्यों? दोनों का मैसेज एक ही है, कम खाना। तो मुस्तहिब रोज़े रखिए जिसके बारे में खुदा फरमाता है रिवायतों में है कि बेशक अल्लाह ताला नमाज फरीज़ा को नमाज नाफिला के ज़रिए और फ़र्ज़ नमाजों को नाफिला, फ़र्ज़ रोज़ों को नाफिला रोज़ों से पूरा कर देता है, मुकम्मल कंपनसेट कर देता है। अगर आपकी फ़र्ज़ नमाजों में कोताही हुई है वो नाफिला नमाजों से पूरी हो जाएगी, फर्ज रोज़ों में कोई कोताही हुई है वो नाफिला रोज़ों से पूरी हो जाएगी। एक दिन का मुस्तहिब रोज़ा दुनिया भर हुए ज़मीन के बराबर सोने से भी बेहतर है, बढ़कर है। तो रमज़ान का रोज़ा कितना बड़ा होगा? तो खुदारा मुस्तहिब रोज़ों को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। कम अज़ कम 3 रोज़े की इंतजार कीजिए। जो शख्स हर माह में 3 रोज़े रखे तो ये शख्स ऐसा है जैसे उसने पूरी ज़िंदगी रोज़े रखे। सुलेमान ने किसी से पूछा ना कि कौन रोज़ाना रोज़े रखता है उमर भर, तो सलमान फारसी ने कहा मैं। तो लोगों ने कहा हमने तो आपको खाते हुए भी देखा है। उन्होंने कहा कि मैं महीने में कम अज़ कम 3 दिन जरूर रोज़े रखता हूँ, और अल्लाह ताला का वादा है कि एक नेकी के बदले 10 नेकी। तो कम अज़ कम 3 रोज़े आप रखने की कोशिश करें। इन तमाम बातों के बावजूद किसी भी इफ्तार में एक इफ्तार को याद रखिएगा कि जिसमें चंद लोगों ने रोज़ा रखा था और इफ्तारी में फकत रोटी थी, और वो रोटी जिसको उन्होंने खैरात कर दिया एन इफ्तार के वक्त, और अपना रोज़ा नमक और पानी से इफ्तार किया। वो नमक इफ्तार की जिसको खुदावंद मुताल ने बीबी सैयदा को जहेज ले दिया था। लेकिन ये नमक इफ्तार, नमक व पानी बीबी सैयदा ने अपनी उम्मत को बख्श दिया, लेकिन इसके बावजूद उम्मत ने नमक खाने के बावजूद नमक हरामी ना छोड़ी और लोगों ने पानी के दरिया से बहती गंगा समझकर उसमें हाथ भी धोए, लेकिन हुसैन को प्यासा मैदान करबला में शहादत के लिए छोड़ दिया। तो खुदारा कम से कम एक इफ्तार कभी भूले भटूरे एक रोटी के साथ कीजिए या रोटी खा के देखिए, कम से कम उस इफ्तार को याद कीजिए कि जिस इफ्तार में लोगों ने जो कुछ था वो भी फकीर को दे दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें माह रमज़ान को उस तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि जिस तरह अहले बैत ने और कुरान ने ताकीद की। इस मौजू से मुतालिक अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन अवल सवालात भरपूर सलाम। कहाँ रहता है मौजूद? नहीं, बहरहाल होता हो या ना होता हो, लेकिन शैतान पाबंद सलासल जरूर रहता हो। सकता है आप अपनी जगह पर महसूर हो, लेकिन शैतान में वो कुव्वत वो ताकत नहीं होती कि वो हमको बहका सके। अगर इसके बावजूद भी कोई मोमिन, कोई मुसलमान, कोई इंसान गुनाह करता है तो समझ लीजिए उसका नफ्स इतना ट्रेन हो चुका है। जैसे हमने कहा ना कि आपके नफ्स में भी कुछ सलाहियतें होती हैं जो आपको गुनाह करवाने पर मजबूर करती हैं, बल्कि ये नफ्स में जो गुनाह करता है शैतान तो स्टिमुलेट करता है, भड़काता है, गुमराह करता है, सिर्फ बसबसे डालता है। तो आपकी कुव्वत गज़ब, आपकी कुव्वत शहवत जब अकल के कंट्रोल से बाहर हो जाए, कुव्वत वहम वो आपसे गुनाह करवाती है, वो शैतान नहीं करता, आप खुद करते हैं। कोई भी जिक्र कीजिए, कोई खास जिक्र का तस्करा नहीं है रिवायत में, कोई भी नहीं इस हवाले से, इस रिवायत के हवाले से, वरना तो बहुत सारे हैं, जैसे तस्बीहात अरबा है उसके बारे में बड़ी ताकीद है, अस्तग़फ़ार है, खुद सलावात है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इमाम के ज़हूर में दाखिल फरमाए और हमें इमाम के सिपाहियों में शामिल फरमाए। वाखरु दावाना।